आचार्य विद्यारण्य स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यानदीप नामक नवम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। ध्यानदीप प्रकरण के 72वें श्लोक की चर्चा होनी है, 71वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके थे। 72वें श्लोक के अवतरण में, यद्यपि कल तो कुछ श्लोक हुए होंगे आपके, अच्छा हाँ, तो 72वें श्लोक का जो अवतरण है टीका में, इसे देखिए। आनंदादीनाम अस्थूलादीनां च गुणानाम उपास्यतत्वे अंतःप्रवेशाभावात् तद्गुण विशिष्टत्वेन कथम उपास्यत्वम् इति आशंक्य तेषां तत्त्वान्तःप्रवेशाभावेऽपि तेषां लक्षकत्वसंभवात् तैर्लक्षितं ब्रह्म उपास्यम् इत्याह। तो ये कहा कि जो सगुण की ही उपासना होती है मानने वाले शंका करते हैं कि व्यास जी ने तो आनंद आदि गुणों का उपसंहार बताया निर्गुण ब्रह्म उपासना में करने के लिए। उस समय उसमें निर्गुणत्व कथन का अभिप्राय ये था व्यास जी का कि जैसे हिरण्य गर्भ आदि का हिरण्य स्मश्रुत्वादि रूप बताया गया है, ऐसा रूप यानी आकार जिसमें आनंद आदि का उपसंहार बताया जा रहा है उसका न होने से, वो निराकार होने से, निरूप होने से उसे निर्गुण कहा गया है, उसकी उपासना को निर्गुण उपासना कहा गया और आनंद आदि का उपसंहार बताया जा रहा है। ये 71वें श्लोक में बताया। तो कहते हैं फिर ठीक है, ऐसा ही मान लो सिद्धांति ने कहा था इति चेत तुष्यतांतोया, लेकिन निर्गुण की उपासना नहीं बनेगी, ये जो आग्रह है उनका वो बना रहता है। तो उस दृष्टि से वे दूसरी शंका कर रहे हैं कि आनंदादि गुणों का तथा निषेध जो अस्थूलत्वादि गुण है इनका, जो निर्गुण उपास्य ब्रह्म है उसके स्वरूप में अंतर्भाव नहीं होगा, स्वरूप में प्रविष्ट नहीं होंगे, विशेषण नहीं बनेंगे, आनंदत्वादि विधेय गुण से तथा अस्थूलत्वादि निषेध गुण से विशिष्ट यदि ब्रह्म स्वरूप नहीं होगा तो फिर उसकी उपासना कैसी बनेगी, ये शंका यहां पर बताई गई कि आनंदादीनाम अस्थूलादीनाम च गुणानाम उपास्य तत्वे अंत प्रवेशाभावात्। तो आनंदादि विधेय गुण तथा अस्थूलादि निषेध्य गुण उपास्य तत्व यानी उपास्य स्वरूप है अंत प्रवेशाभावात्, तो उपास्य स्वरूप में इनका अन्वय नहीं होगा, तो तद्गुण विशिष्टत्वेन कथम उपास्यत्वम्, इन आनंदादि विधेय गुण तथा अस्थूलत्वादि निषेध्य गुण से विशिष्टतया ब्रह्म स्वरूप की उपासना कैसे बन पाएगी, ये प्रश्न हुआ। इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि तेषां तत्वांत प्रवेशाभावेपि, तो तेषां यानी गुणानाम उभय प्रकार के जो गुण हैं इनका तत्व में यानी ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश न होने पर भी, तेषाम लक्षकत्व संभवात। तो ये ब्रह्म स्वरूप से अन्वित हुए बिना ही ब्रह्म स्वरूप के उपलक्षक बनेंगे। जैसे काक जो है देवदत्त के घर के साथ अन्वित हुए बिना ही देवदत्त के घर का उपलक्षक बनता है, ऐसे आनंदादि गुण से विशिष्ट हुए बिना ही ब्रह्म के ज्ञापक उपलक्षक बन जाएंगे आनंदादि गुण। तो आनंदादि गुण गुणों से उपलक्षित हो जाएगा ब्रह्म, यानी ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। और जो ब्रह्माकार वृत्ति बनी आनंदादि गुणों के लक्षणा से, उन गुण के वाचक पदों में लक्षणा की गई, वो उपलक्षक बन गए। और जो उपलक्षक होता है ना, वो जिसका ज्ञापक बनता है उसके साथ अन्वित हुए बिना ही ज्ञान कराता है, शुद्ध का ज्ञान कराता है। कौवा घर के साथ अन्वित हुए बिना केवल देवदत्त के घर का ज्ञान कराता है। उपलक्षण का लक्षण है अविद्यमानत्वे सति बोधकत्वम, अनन्वितत्वे सति अविद्यमानत्वे सति बोधकत्वम उपलक्षकत्वम। उपाधि अलग है, उपलक्षक अलग है और विशेषण अलग है। विशेषण तो विद्यमान भी होता है और जिसका ज्ञापक बनता है उसके साथ अन्वित भी होता है, और अन्वित होकर के ज्ञान में विशेषण भी बनेगा, ज्ञान कराता है। तो विद्यमानत्वे सति अन्वितत्वे सति बोधकत्वम विशेषणत्वम, ये विशेषण है। और विद्यमानत्वे सति अनन्वित त्वे सति बोधकत्वम उपाधित्वम, जो उपाधि विद्यमान रहेगी लेकिन अन्वित नहीं होगी, जिसका ज्ञान कराना है उस ज्ञेय स्वरूप से अन्वित हुए बिना विद्यमान रहते हुए ज्ञेय स्वरूप मात्र की ज्ञापक उपाधि। और जो उपलक्षण होगा, उपलक्षक कहो या उपलक्षण कहो, उसे जरूरी नहीं विद्यमान रहना, उपाधि के तरह अनन्वित होगा, ज्ञेय के स्वरूप के साथ अनन्वित होगा, जैसे उपाधि भी अनन्वित होती है, लेकिन उपाधि विद्यमान रहती है और ये विद्यमान नहीं रहता। उपाधि और उपलक्षण में इतना अंतर है, बोधकत्व दोनों में समान, तीनों भी बोधक है, विशेषण भी बोधक होता है, उपाधि भी बोधक होती है, और उपलक्षण कहो या उपलक्षक कहो वो भी बोधक होता है। तो बोधकत्व तीनों में साम्य है, लेकिन विशेषण में जिसका वो बोधक बनेगा उससे अन्वित होकर के बोधक बनेगा, ये दोष है। बिना अन्वित हुए वो बोधक नहीं बनता। तो विद्यमान रहेगा, अन्वित होगा, बोधक बनेगा। विशेषण विद्यमान रहते हुए अन्वित हुए बिना बोधक बनेगा उपाधि, उपाधि। और विद्यमान भी नहीं रहेगा, अन्वित भी नहीं होगा, बोधक बनेगा उपलक्षण। तो जैसे दंडी स्वामी, तो ये दंड, उस दंडी स्वामी का विशेषण भी होता है, उपाधि भी होता है और उपलक्षण भी होता है। जब कहीं जाते हैं तो दंड को हाथ में पकड़े हुए हैं और जा रहे हैं, तो दंड उनके दंडी स्वामी के साथ अन्वित है ना, विद्यमान है, और बाकी स्वामियों से उनका अलक्ष्य ज्ञान भी करा रहा है, बोधक भी बन रहा है। तो विद्यमानत्व है दंड में और अन्वितत्व है और बोधकत्व है। तो उस समय जब दंड को पकड़ करके चल रहे हैं तो वो दंडी हो गए, उस समय दंड हो गया विशेषण, दंड विशिष्ट हो गए वो स्वामी, दंडी स्वामी। वो बैठे हैं, दंड को कहीं रखा है अलग, भूले नहीं है, पास में दूर रखा है, हाथ में पकड़ा हुआ नहीं है, और कहते हैं कि ये चार और भी महात्मा हैं, तो दंडी कौन है, तो जो जानते हैं उनको दंड के बिना भी बताएंगे कि ये दंडी स्वामी है। तो उस समय दंड विद्यमान तो है लेकिन पास में है, अन्वित नहीं है। तो अनन्वितत्व सति विद्यमानत्व सति बोधकत्व, बाकी चार स्वामी से अलग करके उस दंड ने दंडी स्वामी को बताना, तो हो गया उपाधि, उपाधि हो गया दंड। हाँ, विद्यमान रहेगा, पास में पकड़ करके नहीं रखा है, पास में रखा है दूर। हाँ, अनन्वित रहेगा तो उपाधि, और दंड जब धारण करते हैं तो फिर उस दंड का पूजन भी करना होता है विधि विधान से, नियम होता है। उस नियम के अनुसार जब तक पूजा पाठ आदि दंड की जा सकती है तब तक तो वो दंड धारण करते हैं दंडी, और नहीं कर पाते, मन की ऐसी कुछ स्थिति बनी या कुछ शरीर आदि में कारण, तो फिर उसका विसर्जन करते हैं विधिवत, त्यागना पड़ता है। तो अब अविद्यमान है, अनन्वित है, लेकिन लोग उन्हें दंडी स्वामी कहेंगे, पहले से वर्षों तक दंड धारण किया हुआ था ना, इसलिए कहेंगे दंडी स्वामी है। अब वो है नहीं, अनन्वित भी है, अविद्यमान भी है, लेकिन बोधक बन रहा है, तो वो हो गया उपलक्षण दंड। तो जो दंड की तीनों स्थितियां हैं ना, वो विशेषण भी है, उपाधि भी है, उपलक्षण भी है। ऐसे ये आनंद आदि गुणों को कहा जा रहा है कि जिस दंडी स्वामी ने दंड को फेंक दिया और अनन्वित होगा, वो आनंद आदि गुण का अन्वय नहीं होगा, अज्ञानी के दृष्टि से आनंद आदि गुण भले ही दिख रहे लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में वहां पर नहीं है। ब्रह्म को पूछ लो तो ब्रह्म में न विधेय गुण है न निषिद्ध आनंद गुण है, तो ब्रह्म आनंद आदि विधेय गुण से भी और अस्थूलत्वादि निषेध गुण से भी अपने आप को रहित मानता है, इसलिए अविद्यमान है, और आनंद आदि अनन्वित भी है, तो बन जाएंगे उस समय ब्रह्म की दृष्टि से तो उपलक्षण, ज्ञानी की दृष्टि से कब्बे की तरह ब्रह्म के स्वरूप मात्र के ज्ञापक बनेंगे विवेकी के लिए, और किसी किसी के लिए उपाधि होंगे अज्ञानी के लिए, जो देख रहा है आनंद आदि पास में है लेकिन अनन्वित है और स्वरूप मात्र को इनके द्वारा समझ रहा है, आनंद आदि से उपहित समझ रहा है, तो उपाधि हो जाएंगे, और इनसे युक्त समझ रहा है तो विशिष्ट ब्रह्म हो जाएगा। तो समझने वाले पर है कि वो ब्रह्म को किस दृष्टि से ले रहा है। इससे दंड को विशेषण, उपाधि, उपलक्षण तीनों रूप में लिया जा सकता है, ऐसे आनंद आदि को। तो ये कह रहे हैं कि आनंद आदि का ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश नहीं है, यानी ब्रह्म स्वरूप में अन्वित नहीं है, तो फिर आनंद आदि गुणों से विशिष्टतया ब्रह्म की उपासना कैसे बनेगी, ये शंका हुई। इस शंका का समाधान करते हुए ये बताया जा रहा है कि तेषाम मूर्तयो, तो तेषाम उपलक्षकत्व संभवात तैर्लक्षितम ब्रह्म उपास्यम। तो तेषाम यानी आनंदादि गुणानाम, वो है प्रकार के जो गुण है विधेय तथा निषेध्य, ये लक्षक है, और लक्षक होने से तैर्लक्षितम ब्रह्म उपास्यम, तो उनसे लक्षित जो ब्रह्म है उसकी उपासना होगी। निर्विशेष ब्रह्म का इनसे ज्ञान होता है कि नहीं होता है, लक्षणा से उपलक्षण बन जाएंगे वे, तो वृत्ति बनी केवल ब्रह्म स्वरूपाकार, वो स्वरूप मात्र के ज्ञापक बनेंगे। तो इन आनंदादि गुणों से उपलक्षित जो ब्रह्म स्वरूप मात्र वृत्ति का आलंबन बना, विषय बना, उस विषयाकार यानी ब्रह्माकार जो वृत्ति बनी चित्त में एक बार, तो फिर उसका बार बार आवर्तन रूप उपासना भी हो सकती है। यदि वृत्ति बनती है तो उस वृत्ति का आवर्तन भी हो सकता है, और वृत्ति का आवर्तन ही उपासना है, वो बन जाएगी। इसे कह रहे हैं कि लक्षितम ब्रह्म उपास्यम। तो गुणानाम लक्षकत्वे, गुणानाम लक्षकत्वेन न तत्वेन्तः प्रवेशनम् इति चेदस्त्वेवमेव ब्रह्मतत्त्वमुपाश्यताम्। तो गुणानाम लक्षकत्वेन, तो जो आनंदादि विधेय गुण है और अस्थूलत्वादि निषेध्य गुण है, ये कैसे हैं? तो कहते हैं उपलक्षकत्वेन, ये उपलक्षक है। तो उपलक्षक होने से तत्वे प्रवेशनम न, तो उपलक्षण जो होता है उसका ज्ञेय के साथ अन्वय नहीं होता, ज्ञेय के साथ अन्वय नहीं होता, संबंध नहीं होता, अविद्यमान रहता, अनन्वित होता है, अविद्यमान भी होता अनन्वित भी होता है। जैसे कव्य का देवदत्त के घर के साथ न संबंध है, न उस समय घर पर वो विद्यमान है, अनन्वित है, लेकिन उसी ने ज्ञान कराया देवदत्त के घर का। हाँ, तो ऐसे ये जो गुण है स्वरूप मात्र के ज्ञापक बनेंगे उस कव्य के तरह, वो स्वरूप में विद्यमान नहीं रहेंगे, अन्वित भी नहीं होंगे, और स्वरूप मात्र का ज्ञान कराएंगे। हाँ, तो गुणानाम लक्षकत्वेन, तो गुणों का गुण जो है लक्षक होने के कारण, उपलक्षण होने के कारण, तत्वे यानी ब्रह्म स्वरूपे, ज्ञेय ब्रह्म स्वरूपे अंतक प्रवेशनम न, अन्वय नहीं होगा। इति चेत, ऐसा यदि कहना चाहेंगे शंका करने वाले जो सगुण की ही उपासना मानते हैं निर्गुण की नहीं, वे लोग यदि ऐसा कहना चाहेंगे तो सिद्धांति कहते हैं विद्यारण्य स्वामी जी एवं एव अस्तु ब्रह्म तत्व उपास्यता, कहते हैं हम भी ऐसा ही कह रहे हैं कि आनंद आदि गुण निर्गुण के उपलक्षक हैं। उपलक्षक होने से वो ब्रह्म स्वरूप के ज्ञापक तो होंगे, बोधक तो होंगे, लेकिन ब्रह्म स्वरूप में अन्वित नहीं होंगे, ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म के ज्ञापक बनेंगे, निर्गुण ब्रह्माकार वृत्ति में निमित्त बनेंगे। अब वो निर्गुण ब्रह्म की वृत्ति बनी तो वृत्ति का आवर्तन यही तो उपासना है, तो ये उपासना भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म तत्वम उपास्यतां, इसमें ब्रह्म तत्व शब्द से लीजिए, आनंदादि गुणों से उपलक्षित हुआ, आनंदादि गुणों से अनन्वित निर्गुण ब्रह्म, ये ब्रह्म तत्व शब्द का अर्थ है, ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप। तदाकार वृत्ति में निमित्त बने ये आनंदादि गुण उपलक्षक बन करके, निर्गुण ब्रह्माकार वृत्ति में निमित्त बने ना, इसलिए निर्गुण ब्रह्माकार जो वृत्ति उसका आवर्तन रूप उपासना करो, उपास्यताम का अर्थ निकलेगा कि ब्रह्म तत्वम उपास्यताम। तो जैसे आनंदादि शब्दों से उपलक्षण विधया वृत्ति बनी निर्विशेष ब्रह्माकार, उसी का आवर्तन करते रहो तो ये निर्विशेष की उपासना होगी, निर्गुण की उपासना होगी, ये कहते हैं। तो इति चेद अस्तु एवं एव, इसमें अस्तु और एव तू में यण आदेश हुआ, तू में जो उकार है उसके स्थान पर वकार रूप यकार हुआ, यकारात्मक अच पर में होने से। अब 73वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए, तथोपासन प्रकारम एव दर्शयति, चौथे पाद में कहा गया 72वें श्लोक के कि ब्रह्म तत्वम उपास्यताम, यानी ब्रह्म स्वरूप मात्र की किसी भी गुण से अनन्वित, विधेय गुण से भी और निषेध गुण से भी अनन्वित जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी उपासना करो, ब्रह्म तत्व उपास्यताम का अर्थ है। तो उसी को यहां पर तथोपासन में तथा शब्द से लिया जा रहा है, तथोपासन यानी निर्गुण उपासना का प्रकार बताते हैं 73वें श्लोक में विद्यारण्य स्वामी जी। आनंदादि भीर स्थूला दिविश्चात्मात्र लक्षितः अखंडैकरस सोह मस्मितेव मुपासते। तो आनंदादि भी ही ये हैं विधेय गुण को बताने वाला पद, और अस्तूलादि भी ये है निषेध गुण को बताने वाला पद। तो आनंदादि भीर अस्थूलादि, तो रेफ के पर में अच होने से रेफ जहां था वही रह गया, हमें मिल गया, ऊपर नहीं गया ना। और अस्थूलादि भी यहां पर भीर, वहां भी रेफ था, च है तो च हल है उसके ऊपर जाना चाहिए था उसको, लेकिन खर अवसाने और विसर्जनीय एक विशेष सूत्र है, उससे चकार खर है ना, च रूपी खर के परमे होने से विसर्ग हो गया, फिर विसर्ग को सकार होता है और उसको तालव्य सकार होता है। एक सूत्र आता है स्तोहो चुना चु, इससे तो तालव्य सकार हुआ, वो रेफ था पहले उसी को वो हुआ। तो आनंदादि भी, और आनंदादि भी में आनंद और आदि ऐसा था, तो अकह सवर्णे दीर्घ, आनंद में द में अ है और आदि वाला आ है वो सवर्ण है, तो अकह सवर्ण दीर्घ से दकार उत्तरवर्ती अकार और आदि वाला आ दोनों के स्थान पर एक आदेश हुआ आ, तो आनंद आदि भी ये बना। ऐसे अस्थूलादि भी, इसमें अस्थूला अस्थूल और आदि वही संधि हुई अक सवर्णे दीर्घ। तो आनंदादि विधेय गुण और अस्थूलादि निषेध गुण, इनसे अत्र आत्मा लक्षित। तो अत्र यानी वेदांते उपनिषत्सु, यात्र शब्द का अर्थ है जो निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद प्रकरण है उनको अत्र शब्द से लीजिए। तो निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद प्रकरणों में ये अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। आत्मा लक्षित, तो आनंदादि विधेय गुण तथा अस्थूलत्वादि निषेध गुणों से आत्मा उपलक्षित है, लक्षित यानी उपलक्षित। जैसे कव्वे से देवदत्त का घर उपलक्षित होता है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद प्रकरणों में बताए गए हैं आनंदादि शब्दों के द्वारा आनंदादि विधेय गुण और अस्थूलम अननु इत्यादि से निषेध गुण, वो ब्रह्म स्वरूप में अन्वित करने के लिए नहीं अपितु निर्विशेष ब्रह्म के निर्गुण ब्रह्म के उपलक्षक के रूप में बताए गए हैं, उनसे उत्तम अधिकारी निर्गुण ब्रह्म को समझे, इस दृष्टि से उपनिषदों में आनंद आदि बताए गए हैं, ये कहा गया। यहां पर भी आत्मा च आत्मा और अत्र च कहां पर पूर्वार्ध में ही, अस्थूलादि भी के बाद में च है, फिर आत्मा है और फिर अत्र है, तो च आत्मा यहां अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के चात्मा बना, और फिर आत्मा और अत्र चात्मा अत्र, यहां पर भी आत्मा में आ अख है, उसे सवर्णस्पर है अत्र वाला ह्रस्वाकार, अख है दीर्घाकार, फिर अगर सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के वो बन गया, और यहां पर अवग्रह का चिन्ह लगाया है, यद्यपि पूर्व में भी तो हो गया है ना का सवर्ण दीर्घ, तो ये कोई समझाने की दृष्टि से लगाते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं होता लगाना। कहीं कहीं पर में ह्रस्वाकार था या दीर्घाकार था ये समझाने के लिए वो ऐसा यश जैसा होता है ना, उसे अवग्रह का चिन्ह करता है। उत्तर में आत्मा अत्र में एक चिन्ह लगा तो ह्रस्वाकार था उत्तर में, कहीं कहीं दो भी चिन्ह मिलेंगे तो दीर्घाकार था, ये समझना। दीर्घ होने पर दो चिन्ह रहेंगे, ह्रस्व होने पर एक चिन्ह रहेगा यहां, और कहीं कहीं नहीं भी होता है तब भी संधि नहीं हुई ऐसी बात नहीं है, प्रौढ़ ग्रंथ जो होता है उसमें नहीं भी होता। आगे हैं उत्तरार्ध में अखंडैक रसः ये आत्मा का विशेषण है। ये जो च के बाद में आत्मा है ना, उस आत्मा से लेना निर्गुण ब्रह्म। आत्मा शब्द से जीवा कहीं आत्मा की उपाधि शरीर को भी लिया जाता है, कहीं आत्मा की उपाधि चित्त को भी लिया जाता है। आत्मा शब्द से जीवात्मा को भी लिया जाता है, परमात्मा को भी लिया जाता है। तो यहां आत्मा शब्द से विधेय गुण तथा निषिद्ध गुणों से निर्गुण ब्रह्म के प्रकरण में उपलक्षित जो निर्गुण ब्रह्म है उसे लेना है आत्मा शब्द से, निर्विशेष परमात्मा। तो निर्विशेष परमात्मा के कोई रूपांतर नहीं है, वो एक रस है, एक रूप है। इसे बताने के लिए उत्तरार्ध में पहला पद है अखंडैक रस, अखंड और एक रस, ऐसा अलग अलग था। तो यहां वृद्धि संधि हुई है, वृद्धिरादय सूत्र है, उससे वृद्धिरादय से तो वृद्धि संज्ञा होती है, और वृद्धि रेचि सूत्र है, उससे वृद्धि एकादेश होता है, वृद्धि आदेश होता है। वृद्धि का अर्थ बढ़ना नहीं, वृद्धि का अर्थ है वर्णों की संज्ञा है वृद्धि। ऐ औ आ इन तीन वर्णों का वृद्धि नाम होता है। दीर्घ आ, ऐ औ, ये वृद्धि कहलाते हैं। तो यहां पर ऐ आदेश हुआ अखंड और एक रस में, तो अखंडैक रस बना। खंड का तो अर्थ होता है परिछिन्न, अखंड का अर्थ हो जाएगा अपरिछिन्न, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित वस्तु, वो अखंड कहलाती है। ऐसा जो एक और एक रस शब्द का अर्थ होता है, रस यहां खट्टा मीठा इसके लिए नहीं है, रस शब्द का अर्थ है स्वरूप। रस शब्द के कई अर्थ होते हैं, कहीं रसन इंद्रिय के विषय को बताने के लिए रस शब्द आता है, उसके वो छह प्रकार हैं मधुरादि। वृत्ति से क्या लेना देना आपको, तो ये रस शब्द का अर्थ बता रहे हैं हम। रस शब्द का अर्थ यहां पर बताया जा रहा है स्वरूप को, और एक रस का मतलब एक ही स्वरूप है उसका। वो क्या है कि वह सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, निर्विकार है, यही उनका स्वरूप है। किसका? आत्मा का। और ऐसा जो अखंडैक रस स्वरूप निर्विशेष आत्मा है, उसे निर्गुण ब्रह्म के प्रकरण में आनंद आदि गुणों के वाचक शब्दों से उपलक्षित किया गया। ऐसा उपलक्षित हुआ जो ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, यहां सो अहम इसमें स शब्द है ना, उसके अनुरोध से यह शब्द का अध्याय करना। तो यह अखंडैक रस आत्मा उपलक्षित, जो एक निर्विकार परमात्मा विधेय गुण तथा निषेध गुणों से उपलक्षित हुआ, गुणों का संबंध उसके साथ नहीं है, वो जो निर्गुण परमात्मा है वो उपलक्षित हुआ का अर्थ है वृत्ति का विषय बना, उसका ज्ञान हुआ। उपलक्षित हुआ का अर्थ है उसका ज्ञान हुआ, होने वाला ज्ञान वृत्ति होती है, वृत्ति बनी वैसी। निर्गुण ब्रह्माकार वृत्ति बनी। तो कहते हैं फिर वो जो वृत्ति का विषय भूत अखंडयिक रस परमात्मा है उसे स शब्द से लीजिए। आनंदादि गुणों ने जिसे उपलक्षित किया वह निर्गुण परमात्मा अहम अस्मि ओ मैं हूं। हाँ, आनंदादि गुणों के वाचक शब्दों से उपलक्षित हुआ निर्विशेष परमात्मा मैं हूं। ऐसी वृत्ति को आवर्तित करते रहें, आवर्तन करते रहें, तो माना जाता है कि निर्विशेष की उपासना कर रहे हैं आप, निर्गुण की उपासना हो रही है। ये निर्गुण की उपासना का प्रकार है। ऐसी वृत्ति बार बार अपने प्रयत्न से होती रहे, करते रहें। वृत्ति का विषय तो बनता है भाई, वृत्ति तो चिदाभास का विषय नहीं बनता, उसमें वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति नहीं। वृत्ति व्याप्ति का अर्थ ही होता है वृत्ति विषयता, फल व्याप्ति का अर्थ होता है भासमानता, वृत्तिस्थ चिदाभास से भासमान, वो होगा फल व्याप्ति। जड़ पदार्थ में दोनों होते हैं, वृत्ति व्याप्ति भी फल व्याप्ति भी, लेकिन चेतन होगा तो अज्ञान। वृत्ति व्याप्ति का फल है आवरण को दूर करना, अज्ञान को हटाना, तो चेतन विषयक अज्ञान को दूर करने के लिए वृत्ति व्याप्ति, वृत्ति विषयता सभी वेदांतियों ने मानी है। नहीं तो फिर तत्वमशादी उपदेश व्यर्थ ही होगा ना, यदि निर्गुण ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी, वृत्ति व्याप्ति प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में नहीं होगी तो तत्वमसी वाक्य क्या करेगा। तत्वमसी वाक्य से प्रत्येक अभिन्न निर्गुण ब्रह्माकार वृत्ति होती है, वो उसका विषय बनता है, वृत्ति विषयता उसमें आती है, यही वृत्ति व्याप्ति है, उससे अज्ञान दूर होता है। अज्ञान दूर होगा यदि परमात्मक होगी तो। हाँ, और फल व्याप्ति है वृत्तिस्थ चिदाभास। वृत्तिस्थ चिदाभास क्या करेगा, यदि जड़ वस्तु है तो उसे अवभाषित करेगा, प्रकाशित करेगा घटादि को, लेकिन ब्रह्म तो आत्मा तो चेतन होने से उसे भाषित करने की वृत्तिस्थ चिदाभास से भाषित होने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं भाषित होगा। हाँ, आवरण को दूर करने के बाद उसका प्रयोजन पूरा हुआ तो वो दूर हो जाएगी। जैसे चिता में लगाई हुई जो लकड़ी, उसका प्रयोजन क्या है, मुर्दे को राख बनाना, भस्म करना, तो मुर्दे को भस्म बना करके स्वयं भी भस्म हो जाती है, जल जाती है। ऐसे तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार अज्ञान को जला करके स्वयं भी निवृत्त होती है। ये हो जाता है। तो अखंडयिक रस सोहम अस्मि, तो ओ जो आनंदादि गुणों से उपलक्षित हुआ निर्गुण परमात्मा है वह मैं हूं। ऐसी उपासना करें कौन, मुमुक्षु। उपासते ये बहुवचन है, इसलिए मुमुक्षव उपासते उपासना करते हैं। हाँ 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 हाँ, पहले चंचल मन को स्थिर करने के लिए कोई न कोई उसकी योग्यता का आलंबन चाहिए, और उसकी योग्यता है नाम रूप वाले वस्तु को ही आलंबन करने की, आश्रय बनाने की, विषय बनाने की। इसलिए नाम रूप से युक्त सगुण ब्रह्म विषयक उपासना पहले, उससे जो अनेक पदार्थों में फैला हुआ चित्त है वो एकत्रित होगा, फिर वो परमात्मा के नाम रूप से भी परमात्मा ही हटा करके अपना जो निर्विशेष स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, वह उसके वृत्ति को आलंबन के रूप में प्रदान करते हैं और ब्रह्माकार वृत्ति हुई ये कहा जाता है। वस्तु अधीन प्रमा होती है ना, वस्तु है परमात्मा, निर्विशेष परमात्मा, वो निर्विशेष परमात्मा फिर उसके वृत्ति के आलंबन बनते हैं, सगुण उपासना का परिपाक जिसके हुआ है उसके। जैसे सगुण उपासना अयोग्य है यदि हम निर्गुण के, तो छोड़नी नहीं है, पूर्व पूर्व साधन छूटता जाए, जबरदस्ती छोड़े नहीं, वो छूटता ही, नीचे वाली सीढ़ी छूटी जाती है जो टेरेस पे जाना चाहता है उससे, लेकिन कब, जब नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर वाली सीढ़ी में पैर जो एक रखा हुआ है वो अच्छी तरह से जम जाता है, तो पीछे वाली सीढ़ी का पैर उठ ही जाता है। ऐसे ही ऊपर ऊपर वाली सीढ़ी में एक एक पैर जमाता जा, पीछे वाले सीढ़ी से हटता जाएगा, फिर टेरेस पर पहुंचेगा। निधि ध्यासन प्रयत्न साध्य है, ज्ञान प्रयत्न साध्य नहीं है। ये जो निधि ध्यासन है, हाँ, उपासते करके कहा जा रहा है, वो प्रयत्न से निर्गुण ब्रह्माकार वृत्ति बनानी है। जैसे सगुण ब्रह्म उपासना प्रयत्न साध्य है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म उपासना भी प्रयत्न साध्य है। नहीं, युगपत नहीं होगी, क्रम से होगी, यानी दोनों में क्रम समुच्चय है, योगपद्य नहीं है। सगुण ब्रह्म उपासना और कर्म, इनका सह समुच्चय हो सकता है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म उपासना और कर्म का सह समुच्चय नहीं होता, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म उपासना करने वाले उपासक को अपनी अहम वृत्ति जिस कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य करने से स्वयं में कर्तृत्व प्रतीत होता है, उस कार्यक्रम संघात से अहम वृत्ति को हटाना होता है और निष्क्रिय निर्विकार जो आनंदादि से उपलक्षित ब्रह्म है उसके आश्रित ले जाना होता, करना होता है अपनी अहम वृत्ति को। तो वो जो अहम वृत्ति का आलंबन बना हुआ जिसको हम बना रहे हैं, वो सक्रिय न होने से उस समय निर्गुण उपासक अपने आप को कर्ता अनुभव नहीं करेगा, स्वयं में कर्तृत्व का निश्चय नहीं होगा। तो बिना कर्तृत्व के, कर्तृत्वाभिमान पूर्वक होने वाला जो कर्म है वो नहीं होगा। तो इसलिए कर्म और निधि ध्यासन इनका सह समुच्चय नहीं है। क्रम समुच्चय, पहले कर्म हो सकता है, निर्गुण सगुण उपासना के साथ सगुण हो सकता है कर्म। इसलिए ईशावासी उपनिषद में सह समुच्चय बताया है सगुण उपासना और कर्म का, उससे किससे, विद्यांचा विद्यांचा यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते, ये है कर्म उपासना का सह समुच्चय बताने वाला वाक्य। वो कर्म के साथ समुचित होने वाली उपासना है सगुण उपासना, इस उपासना का कर्म के साथ संबंध नहीं होगा, सह समुच्चय नहीं होगा। तो सो अहम अस्मि इत्येवम् उपासते, वह मैं हूं ऐसी उपासना करता है उपासक। इस श्लोकस्थ कुछ व्याख्याय पद हैं, उनकी व्याख्या टीकाकार करते हैं। जो पूर्वार्ध में अत्र पद हैं, आत्मा चात्र लक्षितः, यहां पर उसमें अत्र शब्द का अर्थ करते हैं अत्र यानी आसु श्रुतिषु, अत्रासु, यहां पर भी अकसवर्णी दीर्घ हुआ अत्र आसु। तो ये सूत्र जो पढ़े हैं उनको ऐसे हर जगह एक एक शब्द पढ़ते समय कौन सा लगा होगा इसका विचार करते हुए करने से वो पढ़े हुए सूत्र बुद्धि में प्रकट रहते हैं, उद्भूत रहते हैं, नहीं तो भूल जाता है। तो अत्रासु श्रुतिषु यो अखंडैक रसः, यो अखंडैक रसः, यहां कौन सा हुआ? यहां एंग पदांतादति एक सूत्र है, उससे पूर्व रूप एकादेश हुआ, वो अभी आया नहीं आपको। तो यह अखंडैक रसः, तो जो अखंडैक रस है आत्मा आनंदादि विधेय गुण और अस्थूलादि निषेध्य गुणों से लक्षित हुआ जो अखंडैक रस आत्मा, सो अहम अस्मि इत्येवम् उपासते। तो उपासते क्रियापद के कर्ता के रूप में मुमुक्षवः इस पद का अध्याहार करना है, ये टीकाकार कहते हैं कि मुमुक्षव इति शेषः। तो उपासते एक क्रियापद है, बिना कर्ता के क्रिया कैसे होगी? तो उपासना क्रिया का कर्ता कौन है? निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करने वाले कौन है? तो कहा मुमुक्षव, इसके अधिकारी है मुमुक्षु, अभ्युदय चाहने वाले नहीं। अभ्युदय चाहने वालों के लिए तो सगुण उपासना है और कर्म, और मात्र मोक्ष की इच्छा जिनको है वे मुमुक्षु निर्गुण उपासना के अधिकारी हैं, वे करता है, ये यहां पर बताया गया। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।